एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो अमेरिकी इतिहास के शायद सबसे विवादास्पद राष्ट्रपतियों में से एक हैं, रिचर्ड निक्सन।
जी हाँ, 37वें राष्ट्रपति, और उनकी कहानी वाकई में जबरदस्त उतार चढ़ाव वाली है।
बिल्कुल, और इसे समझने के लिए हम इवान थॉमस की 2015 की किताब बीइंग निक्सन, अ मैन डिवाइडेड का सहारा ले रहे हैं।
हाँ, और ये किताब सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं देती, बल्कि निक्सन के मन की गहराइयों में उतरने की कोशिश करती है। वो इंसान कैसा था, क्या सोचता था, क्यों करता था जो वो करता था, मतलब एक बटे हुए इंसान की कहानी।
रिचर्ड मिलहाउस निक्सन 1913 में कैलिफोर्निया में जन्म, एक सामान्य क्वेकर परिवार में।
क्वेकर यानी शांति और सादगी पर जोर देने वाला ईसाई समूह।
हाँ, और देखिए, सफर कांग्रेस सदस्य, सीनेटर, फिर उपराष्ट्रपति और आखिर में राष्ट्रपति। लेकिन विडंबना ये कि वो अकेले ऐसे अमरीकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें पद छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा।
और यही चीज, यही विरोधाभास उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है। एक तरफ देखिए, विदेश नीति में क्या कमाल के काम किए।
चीन के साथ रिश्ते खोलना, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस समय,
बहुत बड़ी, दशकों की दुश्मनी के बाद। और दूसरी तरफ वाटरगेट स्कैंडल, जिसने सब पर पानी फेर दिया।
और उनकी वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाली फितरत सामने आ गई।
बिल्कुल, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी हमेशा एक बाहरी या अंडरडॉग जैसा महसूस करता रहा।
हाँ, ये जानना वाकई दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उनके शुरुआती सालों से।
जरूर। तो जन्म हुआ योर्बा लिंडा, कैलिफोर्निया में। माहौल थोड़ा मिला जुला था, एक तरफ परिवार की आर्थिक तंगी, संघर्ष,
और दूसरी तरफ क्वेकर धर्म का असर, सादगी, अनुशासन।
जी। पिता फ्रैंक थोड़े कह सकते हैं गुस्सैल स्वभाव के थे, बिजनेस में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। माँ है ना, वो बिल्कुल उलट थी, शांत, बहुत धार्मिक और अनुशासित।
तो ये विरोधाभास बचपन से ही उनके साथ था।
हाँ, और शायद इसने उनके अंदर के द्वंद्व को और बढ़ाया। फिर एक और चीज हुई जिसने गहरा असर डाला।
क्या?
उनके दो भाइयों की मौत हो गई टीबी से, आर्थर और हैरल्ड।
ओह, ये तो बहुत दुखद है।
हाँ, और कहते हैं कि इस त्रासदी ने निक्सन में एक गहरी उदासी तो भरी, लेकिन साथ ही एक जिद भी पैदा की कि उन्हें मतलब उन सब के हिस्से की कामयाबी भी हासिल करनी है, जैसे वो परिवार की आखिरी उम्मीद हों।
तो इस सब ने उन्हें बहुत मेहनती बनाया होगा।
बहुत ज्यादा, लेकिन साथ ही ये एहसास भी कि वो हमेशा एक बाहरी हैं जिन्हें हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। दूसरों को शायद आसानी से मिल जाता है, पर उन्हें नहीं।
और ये बाहरी होने का एहसास पढ़ाई में भी चला, विटियर कॉलेज, ड्यूक लॉ स्कूल।
हाँ बिल्कुल, विटियर में वो डिबेट वगैरह में बहुत अच्छे थे, छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे, पर वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते थे। ड्यूक लॉ स्कूल में स्कॉलरशिप मिली, पर वहां भी वो ईस्ट कोस्ट के अमीर अभिजात्य वर्ग के बीच एक गरीब कैलिफोर्नियाई लड़के जैसा महसूस करते थे।
उनका एक निकनेम भी पड़ गया था वहां, है ना, आयरन बट।
हाँ, क्योंकि वो घंटों पढ़ाई करते थे, टिक कर बैठते थे। लेकिन देखिए, उन्होंने इस अकेलेपन को हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने अपने जैसे बाहरी छात्रों के लिए एक ग्रुप बनाया, ऑर्थोगोनियन।
अच्छा।
और मजे की बात, नेवी में पोकर खेलकर जो पैसे जीते, उन्हीं से अपना पहला चुनाव लड़ा। उनके लिए पढ़ाई या कोई भी काम, वो एक मुकाबला था, रणनीति का खेल था।
और राजनीति में आते ही तेजी से आगे बढ़े, 1946 में कांग्रेस का चुनाव।
हाँ, और वो चुनाव उन्होंने काफी आक्रामक तरीके से लड़ा, तभी से उनका नाम ट्रिकी डिक यानी थोड़ा चालबाज या तिकड़मी डिक पड़ गया।
फिर वो HOAC, हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी में शामिल हुए, कम्युनिस्ट प्रभाव की जांच वाली कमेटी।
जी, और उसमें आल्जर हिस केस की जांच ने उन्हें एकदम से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला दी। वो कम्युनिज्म के खिलाफ एक बड़े योद्धा की तरह देखे जाने लगे।
और फिर तो सिर्फ 39 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति आइजनहावर के साथ 1952 में।
हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ये पद उनके लिए मिला जुला अनुभव रहा। सम्मान तो था, पर आइजनहावर थोड़ी दूरी रखते थे, उन्हें शायद कमतर महसूस कराते थे।
और तभी वो चेकर्स वाला भाषण आया था ना।
बिल्कुल, उन पर कुछ वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे थे, तो उन्होंने टीवी पर आकर एक बहुत भावुक भाषण दिया, अपने खर्चे बताए, अपनी पत्नी का कोट बताया, और कहा कि उनके पास तोहफे में मिला बस एक कुत्ता है, चेकर्स, जिसे वो वापस नहीं देंगे।
और उसने काम कर दिया, करियर बच गया।
हाँ, लोगों से सीधा जुड़ाव बना लिया, लेकिन फिर हार का दौर भी आया।
1960 का राष्ट्रपति चुनाव, जॉन F. केनेडी के खिलाफ।
हाँ, और वो हार उनके लिए बहुत बड़ा, मतलब गहरा सदमा था। बहुत करीबी मुकाबला था और पहली बार टीवी डिबेट हुई थी।
जिसमें कहते हैं कि निक्सन थके और बीमार लग रहे थे और कैनेडी ज्यादा तरोताजा और आत्मविश्वासी।
जी, और निक्सन को हमेशा लगा कि ये चुनाव उनसे धोखे से छीना गया है। मीडिया, कैनेडी परिवार सब मिले हुए थे,
इससे तो कड़वाहट और बढ़ी होगी।
बहुत ज्यादा। फिर 1962 में कैलिफोर्निया गवर्नर का चुनाव भी हार गए, और उसके बाद उनकी वो मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई।
हाँ, जिसमें उन्होंने कहा था अब आपके पास निक्सन नहीं होगा जिसे आप लात मार सके।
लगा कि बस अब इनका राजनीतिक करियर खत्म।
बिल्कुल,
वो एक तरह का राजनीतिक वनवास था, लेकिन निक्सन की खासियत थी कि वो हार नहीं मानते थे। उन्होंने दुनिया घूमी, किताब लिखी सिक्स क्राइसिस।
अच्छा, सिक्स क्राइसिस।
हाँ, अपने जीवन के 6 संकटों के बारे में, और धीरे धीरे अपनी वापसी की तैयारी करते रहे। और फिर आया 1968।
और वो जीत गए, राष्ट्रपति बन गए। कमाल की वापसी।
हाँ, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी हुई, और यहीं राष्ट्रपति के तौर पर उनका वो दोहरा व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सामने आया।
एक तरफ वो शानदार विदेश नीति,
बिल्कुल, चीन के साथ संबंध बनाना, सोवियत संघ के साथ तनाव कम करना, जिसे दितोंत कहते हैं, ये ऐतिहासिक काम थे।
और घरेलू मोर्चे पर भी कुछ अहम काम किए। EPA यानी पर्यावरण एजेंसी, OSHA यानी कामगारों की सुरक्षा।
जी हाँ, दक्षिण के स्कूलों में नस्ल भेद खत्म करने के लिए भी कदम उठाए।
लेकिन
लेकिन उनका वो अंधेरा पक्ष भी साथ साथ चल रहा था।
हाँ, वो शक, वो गुस्सा, वो हम बनाम वो वाली सोच कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, हम यानी सच्चे मेहनती अमेरिकी, और वो यानी हमारे दुश्मन उदारवादी मीडिया, बुद्धिजीवी, प्रदर्शनकारी।
और इसी मानसिकता ने आखिरकार वाटरगेट को जन्म दिया।
बिल्कुल, ये सब शुरू हुआ राजनीतिक दुश्मनों के डर से। डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में चोरी की एक कोशिश,
जो नाकाम नहीं। हाँ, और फिर उस चोरी को छुपाने की कोशिश में बात बढ़ती चली गई। पता चला कि ये तो व्हाइट हाउस से संचालित एक बड़ा जाल था, राजनीतिक जासूसी, तोड़फोड़ और फिर उस पर पर्दा डालने का अभियान।
और जब ओवल ऑफिस की रिकॉर्डिंग्स का पता चला,
हाँ, वो टेप्स, निक्सन ने उन्हें देने से इनकार कर दिया, और फिर एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, महाभियोग का खतरा, और आखिरकार अगस्त 1974 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया।
क्या पतन था।
जबरदस्त। पद छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी छवि सुधारने की बहुत कोशिश की, संस्मरण लिखे, विदेश नीति पर किताबें लिखीं, खुद को एक अनुभवी राजनेता के तौर पर पेश किया,
बाद के राष्ट्रपतियों को सलाह भी देते थे।
जी, 1994 में जब उनकी मृत्यु हुई तो श्रद्धांजलि में लोगों ने माना कि उनका असर बहुत गहरा था, भले ही वो एक फ्लॉड, मतलब त्रुटिपूर्ण व्यक्ति थे। एक तरह से उन्होंने अपनी राजनीतिक मौत के बाद भी वापसी कर ली थी।
तो इस शख्स के अंदर, मतलब उनकी सोच क्या थी, दुनिया को कैसे देखते थे वो, उनका मूल दर्शन क्या था?
देखिए, निक्सन बुनियादी तौर पर यथार्थवादी थे,
प्रैक्टिकल,
प्रैक्टिकल, खासकर विदेश नीति में। वो दुनिया को संघर्ष और खतरे की जगह मानते थे।
अच्छा।
उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़ी ताकतों के बीच एक शतरंज की बिसात की तरह थे, पावर पॉलिटिक्स। यहाँ आदर्शों या भावनाओं की ज्यादा जगह नहीं थी, लक्ष्य था व्यवस्था, स्थिरता, शक्ति संतुलन।
इसीलिए वो कम्युनिज्म के कट्टर विरोधी होते हुए भी कम्युनिस्ट चीन से हाथ मिला पाए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल था।
बिल्कुल, राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर। घरेलू राजनीति में उनकी सोच थोड़ी कम स्पष्ट थी, वो ज्यादातर राजनीतिक जरूरतों और उस उदारवादी एस्टैब्लिशमेंट के प्रति उनके गहरे गुस्से से चलती थी जिससे वो नफरत करते थे।
वो साइलेंट मेजॉरिटी की बात करते थे।
हाँ, वो आम मेहनती अमेरिकी जिन्हें लगता था कि मीडिया और एलीट वर्ग उन्हें नजरअंदाज करता है। निक्सन ने खुद को उनकी आवाज के तौर पर पेश किया।
और ये हम बनाम वो वाली सोच तो बहुत पक्की थी उनमें।
बहुत ज्यादा। दुनिया दो हिस्सों में बंटी थी, हम यानी असली देशभक्त अमेरिकी जो संघर्ष करते हैं, और वे यानी उदार मीडिया, युद्ध विरोधी लोग, ईस्ट कोस्ट के बुद्धिजीवी, कैनेडी जैसे लोग। ये घेराबंदी वाली मानसिकता उनके शासन में भी झलकी।
मतलब असहमति को देशद्रोह जैसा समझना।
हाँ, और राजनीतिक विरोधियों को निजी दुश्मन मान लेना।
अच्छा, और इन सबको करने की प्रेरणा कहाँ से आती थी, क्या चीज उन्हें ड्राइव करती थी?
जैसा किताब बताती है, सबसे बड़ी चीज थी उनकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा, और ये महत्वाकांक्षा जन्मी थी उनकी गहरी असुरक्षा से। वो इनसिक्योर थे।
इतनी सफलता के बाद भी?
हाँ, वो खुद को साबित करना चाहते थे, उन एलीट लोगों की इज्जत पाना चाहते थे जिनसे वो नफरत भी करते थे। उन्हें लगता था कि वो उन्हें स्वीकार नहीं करते, वो इतिहास में एक महान व्यक्ति के तौर पर याद किए जाना चाहते थे। ये सिर्फ सत्ता की नहीं, मान्यता की भी भूख थी।
और गुस्सा, गुस्से का कितना रोल था?
गुस्सा भी एक बड़ी प्रेरणा था। कहते हैं वो कोई अपमान कभी भूलते नहीं थे, रिजेंटमेंट। लेकिन इसी गुस्से ने कई बार उनके फैसले लेने की क्षमता को धुंधला किया। उनमें जीतने की जिद तो थी, पर साथ ही दुश्मनों को हारते देखने की गहरी अंधेरी इच्छा भी थी।
और मुश्किलों का सामना कैसे करते थे वो? विपत्ति में उनकी क्या प्रतिक्रिया होती थी?
ये निक्सन की एक खास बात थी, वो मुश्किलों में ज्यादा मजबूत हो जाते थे। संकट से भागते नहीं थे, उसे एक अवसर की तरह देखते थे।
अच्छा।
हाँ, जब उन पर हमला होता था तो वो और ज्यादा फोकस्ड, अनुशासित, रणनीतिक बन जाते थे। उनका मंत्र था, डटे रहो, कठोर बनो, जोखिम लो, कभी हार मत मानो।
जैसे वो चेकर्स भाषण या ख्रुश्चेव के साथ किचन डिबेट
या 1968 की वापसी, ये सब इसी के उदाहरण हैं। लेकिन
यही आदत वाटरगेट में उनके खिलाफ चले गई।
बिल्कुल, नुकसान कम करने या गलती मानने के बजाय उन्होंने लड़ने और उसे छुपाने पर जोर दिया। वो उसे भी एक और राजनीतिक लड़ाई समझ बैठे जिसे हर हाल में जीतना था, और वहीं वो हार गए।
उनकी जिंदगी में ऐसे कौन से मोड़ थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया? 3 सबसे अहम मोड़।
जरूर, पहला मेरे ख्याल से अल्जर हिस केस था 1948 में।
हाँ, जब वो युवा कांग्रेसी थे।
जी।
उन्होंने पूर्व विदेश विभाग अधिकारी अल्जर हिस पर कम्युनिस्ट जासूस होने के आरोपों की जबरदस्त पैरवी की। हिस को आखिरकार झूठी गवाही का दोषी पाया गया।
इसका निक्सन पर क्या असर हुआ? सिर्फ शोहरत?
शोहरत तो मिली ही, वो रातों रात कम्युनिस्ट विरोधी हीरो बन गए। लेकिन उससे ज्यादा इस केस ने उनके मन में दुनिया को लेकर जो शक था उसे और पक्का कर दिया। उन्हें यकीन हो गया कि उदारवादी प्रतिष्ठान, प्रेस, ये सब उनके खिलाफ हैं, और जीतने के लिए सख्त, यहां तक कि क्रूर तरीके अपनाने जरूरी हैं। वो हम बनाम वे वाली सोच और गहरी हो गई।
ठीक है, ये पहला। दूसरा अहम मोड़,
शायद 1960 का राष्ट्रपति चुनाव हारना कैनेडी से।
वो करीबी हार,
बहुत करीबी, और वो पहली टीवी डिबेट का असर। निक्सन को हमेशा लगा कि चुनाव चोरी हो गया, धांधली हुई।
इसका असर क्या हुआ?
ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक घाव था। इसने कैनेडी परिवार और प्रेस के लिए उनकी नफरत और शक को, उनके पैरानोरिया को और ज्यादा बढ़ा दिया। साथ ही उसने उनकी वापसी की जिद को और मजबूत किया। ये विश्वास पक्का हो गया कि जीतने के लिए उन्हें दोगुना ज्यादा सख्त और बेरहम होना पड़ेगा।
और तीसरा मोड़, जाहिर है वाटरगेट।
हाँ, वाटरगेट कांड और फिर इस्तीफा 1972 से 74 तक। जैसा हमने बात की, एक चोरी की कोशिश से शुरू होकर ये निक्सन प्रशासन की राजनीतिक जासूसी, तोड़फोड़ और फिर उसे छुपाने की एक विशाल साजिश बन गई।
टेप्स का सामने आना, उन्हें देने से इनकार करना
और फिर महाभियोग के खतरे के चलते इस्तीफा।
इसने उन्हें कैसे बदला एक इंसान के तौर पर?
ये वो तबाही थी जिसने उनका राष्ट्रपति पद ही नहीं छीना, उनकी पूरी विरासत को परिभाषित कर दिया। ये उनके सारे नकारात्मक लक्षणों का चरम था। शक, राजदारी, दुश्मनों के प्रति गुस्सा, संकट में लड़ने की आदत। इसने उनसे वो शक्ति और सम्मान छीन लिया जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया था। वो एक टूटे हुए, अपमानित व्यक्ति रह गए। ये सिर्फ राजनीतिक पतन नहीं था, ये गहरा व्यक्तिगत पतन था।
निक्सन की इस पूरी कहानी से, उनकी जिंदगी से, हम आज क्या सीख सकते हैं? कुछ मानवीय सबक?
मुझे लगता है कई सबक हैं। पहला शायद गुस्से और शिकायत की जहरीली ताकत के बारे में है। अगर हम मन में कड़वाहट और पुरानी शिकायतों को ही अपनी मुख्य प्रेरणा बना लें तो ये हमारी सफलता को भी जहरीला बना सकता है और अंत में हमें खुद ही नुकसान पहुंचा सकता है।
और ये कि ताकत और कमजोरी एक ही चीज के दो पहलू हो सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, निक्सन की वही जिद, वही संकट में डटे रहने की क्षमता जिसने उनकी वापसी मुमकिन बनाई, वही गुण जब उनमें विनम्रता या आत्म जागरूकता की कमी थी, वाटरगेट में उनके पतन का कारण बने। हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है अगर हम सावधान न रहें।
और एक बात जो आपने पहले कही, शिखर पर पहुंचकर भी असुरक्षित महसूस करना।
जी, अपार शक्ति और सफलता भी जरूरी नहीं कि अंदर की गहरी असुरक्षा को ठीक कर दे, शायद वो उसे और बढ़ा देती है। इससे शक पैदा होता है, पैरानोया होता है और नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं।
और शायद सबसे बुनियादी सबक कि हमारा चरित्र ही हमारी किस्मत तय करता है।
हाँ, किताब का सार यही लगता है। नीतियां, राजनीति, ये सब चरित्र के बाद आते हैं। निक्सन की मनोवैज्ञानिक बनावट, उनके अंदर के द्वंद्व, उनकी असुरक्षाएं, आखिरकार यही वो चीजें थीं जिन्होंने उनकी जिंदगी और उनके राष्ट्रपति काल की दिशा तय की।
निक्सन की कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जिससे शायद आज भी लोग जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। महत्वाकांक्षा, नाकामी से निपटना, पब्लिक इमेज और निजी सच का संघर्ष, बचपन के अनुभवों का असर।
बिल्कुल, ये सब सार्वभौमिक अनुभव हैं। हम सब इनसे किसी न किसी रूप में गुजरते हैं।
तो इस पूरी चर्चा के अंत में अगर तीन मुख्य बातें हमें याद रखनी हो निक्सन और इस किताब से, तो वो क्या होंगी?
पहले शायद एक जज्बाती या भावनात्मक अंतर्दृष्टि, वो ये कि सत्ता के शिखर पर भी इंसान कितना अकेला और असुरक्षित महसूस कर सकता है, और ये अकेलापन, ये असुरक्षा विनाशकारी व्यवहार को जन्म दे सकती है। जैसे वो किस्सा है कि निक्सन व्हाइट हाउस में देर रात अकेले घूमते हुए पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्रों से बातें करते थे। ये राजनीतिक स्कैंडल के पीछे की मानवीय त्रासदी को दिखाता है।
ठीक है, दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि,
वो है निक्सन का विरोधाभास। कैसे एक ही तरह के गुण, लड़ने की जिद, रणनीतिक सोच, उनकी सबसे बड़ी कामयाबियों जैसे चीन से रिश्ते, राजनीतिक वापसी, और उनकी सबसे बड़ी नाकामी वाटरगेट को छुपाने की कोशिश, दोनों के लिए जिम्मेदार थे। संकट से निपटने का उनका तरीका उनकी ताकत भी था और उनकी घातक कमजोरी भी।
और तीसरी एक सार्वभौमिक बात जो हम सब के लिए हो,
वो शायद यही कि चरित्र ही नियति को आकार देता है। हमारे अंदर के गहरे बैठे डर, गुस्सा, शक, अगर हम उन्हें पहचाने और काबू न करें तो वो हमारी बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षा को भी भ्रष्ट कर सकते हैं और हमें आत्मविनाश की ओर ले जा सकते हैं। और इसका असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया पर भी पड़ता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।